आज नित्यांत त्रयोदशी के अवसर पर यानी कि नित्यांत प्रभु के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में हम नित्यांत प्रभु के गुणगान करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद के रूप में नित्यांत प्रभु लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल में अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से कुछ समय पहले, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में अनेक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने सेवा की। तो नित्यानंद प्रभु कौन है और हम सभी के जीवन में नित्यानंद प्रभु की शरण लेना कितना महत्वपूर्ण है, इसको जानने के लिए हम नित्यानंद प्रभु के गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए उनका एक प्रणाम मंत्र। वंदे अनंत भूतैश्वर्यम् श्री नित्यानंदम् ईश्वरम् यस्य इच्छया तत्स्वरूपम् अन्येनापि निरूप्यते। इसका अर्थ है कि हम अद्भुत ऐश्वर्य से युक्त नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, जिनकी इच्छा से उनके स्वरूप को कोई अज्ञानी व्यक्ति भी जान सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में पहले अध्याय में 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, और फिर बाद में इन 5 श्लोकों के अर्थ को विस्तार से समझा रहे हैं। तो हम इनमें से कुछ श्लोक का पाठ करेंगे और उसके ऊपर कुछ व्याख्या करेंगे। प्रथम श्लोक है ये, पहले 5 श्लोक हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक एक श्लोक का विवरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी देंगे। संकर्षण कारण तोयशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्याश्म यस्यांश कलाहस नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। तो इसका अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु वो बलराम हैं जो 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। एक महासंकर्षण के रूप में, दूसरा कारणोदकाशाय विष्णु के रूप में, तीसरा गर्भोदकाशाय विष्णु के रूप में, चौथा शिरोदकाशाय विष्णु के रूप में, और पांचवा अनंत शेष के रूप में। इन 5 रूपों में नित्यानंद प्रभु जो आदि संकर्षण है वो इन 5 रूपों में अपना विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा सुख सेवा का आनंद लेते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्याद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अब इसमें जो सबसे पहला विस्तार है संकर्षण महासंकर्षण, उनके विषय में ये श्लोक है कि मायातीत माया के परे जो वैकुंठ लोक है वहां पर चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, उनमें से ये नित्यानंद प्रभु संकर्षण है। फिर आगे वर्णन है माया भरताजांड संघाशयांग शेते साक्षात कारणाम बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमान आदिदेवस कंश नित्यानंद रामम प्रपद्ये। फिर ये जो दूसरा उनका रूप है कारण दकाशाय विष्णु, उसके उसके गुणगान में ये श्लोक है कि अलग अलग जो ब्रह्मांड हैं वो सब जिनके रोमों से निकलते हैं, ऐसे भगवान जिनके अंश हैं कला, ऐसे श्री नित्यानंद राम को मैं की शरण में लेता हूं। यस्याम शह श्री श्रीधर गर्भोदय शयी वन नाभ्याब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। फिर उनके चौथे रूप का वर्णन है यहां पर, जिसमें गर्भोदय का शायद विष्णु के रूप में वो एक एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं और जिनकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो सभी लोकों का निवास स्थान है और जिसके ऊपर प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और फिर उसके बाद में पांचवें रूप का वर्णन है, यस्याम शाम शाम शह परात्मा खिलानम पोष्टा विष्णु भर्त्री दुग्धाप्ति सही शौनि भर्तायत कलायोपि अनंतस तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो यहां पर शोधक साई विष्णु जो परमात्मा के रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है और जो एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक क्षीर सागर है, दुग्ध दूध का सागर, वहां पर ये एक वैकुंठ लोक है श्वेत द्वीप नाम से। उस श्वेत द्वीप नाम में नाम के जो द्वीप है उसमें शिवदकशाय विष्णु के रूप में जो भगवान विष्णु वहां रहते हैं और जो हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, ये उन्हीं नित्यानंद राम के एक अंश के अंश के अंश हैं। और शेष नाग जिनके ऊपर एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, वो शेषनाग भी उन्हीं के ही विस्तार हैं। इस प्रकार से ये पांच रूप। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी विस्तार से इस तत्व इन तत्वों का वर्णन करेंगे, तो हम ये पाठ करेंगे। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तनहार द्वितीय देह श्री बलराम। सभी अवतारों के अवतारी हैं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान है वो, और उन्हीं का द्वितीय देह है श्री बलराम। यानी कि बलराम और श्री कृष्ण एक ही है दो अलग अलग रूप में, उनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और बलराम में वो एक ही व्यक्ति दो अलग अलग रूप में है। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय आद्य काय व्यू कृष्ण विदार सहाय। एक ही दोनों का स्वरूप है लेकिन भिन्न मात्र काय, लेकिन रूप केवल अलग अलग है। क्यों अलग अलग रूप है? तो नित्यानंद प्रभु यानी बलराम और अन्य जो चतुर्व्यू हैं वो भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप के माध्यम से भगवान की अलग अलग लीलाओं में सहायता करने के लिए अलग अलग रोल अदा होते हैं भगवान के विस्तारों में। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो वही कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और जैसे कि बलराम श्री कृष्ण की सहायता करते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य लीला में कृष्ण की सहायता, चैतन्य महाप्रभु की सहायता नित्यानंद के रूप में बलराम जी करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे कृष्ण रसेवन। ये जो बलराम है ये मूल संकर्षण है। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले विस्तार बलराम है जो प्रथम चतुर्व्यूह में एक है, और ये चतुर्व्यूह वासुदेव यानी स्वयं कृष्ण, उनके सबसे पहले विस्तार बलराम और फिर अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूह कहते हैं यानी कि भगवान के प्रथम विस्तार। तो ये और फिर प्रथम चतुर्व्यूह के बाद फिर दूसरा विस्तार होता है, यानी कि जो मूल संकर्षण है उनसे दूसरा चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, और उसके बाद फिर पुरुष अवतार आते हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु तत्व को भली भांति जानने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम जानें कि नित्यानंद प्रभु कोई सामान्य जीव नहीं है, नित्यान प्रभु की महिमा, नित्यान प्रभु बलराम है, और बलराम कैसे कैसे कितने वो महान है। जैसे कि श्री प्रभुपाद कहते थे केवल भगवान महान है यही जान लेना केवल काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें जानना चाहिए कि भगवान कितने महान हैं। तो इसी प्रकार से नित्यान प्रभु यानी बलराम कितने महान हैं वो जानने के लिए हमें इन तत्वों को गहराई में जानने का प्रयास करना चाहिए। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे न कृष्ण रसेवन। तो पांच रूप लेकर के वो भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिन पे पढ़ा था, अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु, महाविष्णु हैं। तो वो भी कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण की सेवा करते हैं और आनंद लेते हैं, सेवा का आनंद। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करके आन लेते हैं। तो ये सिद्ध्य भगवान है, सेवक भगवान है, जो भगवान है लेकिन सेवक के रूप में सिद्ध्य भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से, और वो हम जीवों को भी भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व भी हैं। जो सभी गुरुजन हैं वो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त किए होते हैं, और जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भगवान की लीला में अलग अलग प्रकार सहायता करते हैं, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की कृपा को धारण करते हुए गुरुजन हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। आपने करे न कृष्ण लीला र सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काय। तो कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए वो ये अलग अलग प्रकार के रूप बलराम जी लेते हैं। सृष्टि आदि का सेवा कांड्रा अज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्णेरा विविध सेवन। सृष्टि आदि के कार्य जो भगवान का आदेश है, श्री कृष्ण का आदेश, सृष्टि आदि का कार्य करने के लिए वो ये संकर्षण का रूप महाविष्णु, गर्भोदकाशाय विष्णु, शिरोदकाशाय विष्णु का रूप लेते हैं, चार रूप। और जो पांचवा रूप है अनंत शेष, उसमें भगवान की व्यक्तिगत सेवा करते हैं विभिन्न रूप लेकर के। भगवान की शैया बनते हैं, भगवान की पादुका बनते हैं, जो भगवान के शंख है वो बनते हैं। ऐसे अनंत शेष के रूप में बलराम अलग अलग व्यक्तिगत भगवान के जो सभी वस्तुएं हैं, जो भगवान पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जो इनका उपयोग करते हैं, वो सभी बलराम के ही विस्तार हैं। इसलिए मृदंग को भी हम ये बलराम का विस्तार है, क्योंकि बलराम शेष अनंत शेष के रूप में इस प्रकार से सभी जो पैराफर्नेलिया है भगवान की पर्सनल व्यक्तिगत सेवा का, वो सब में अपना विस्तार करते हैं। सर्व रूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद सही बलराम गौर संग नित्यानंद। इन सभी रूप में कृष्ण सेवा का आनंद लेते हैं बलराम, और वही बलराम गौर चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद के रूप में आए हैं। तो अभी जो पहला श्लोक है उसकी व्याख्या होगी कि मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यस्यार भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो अभी चतुर्व्यूह के विषय में वर्णन होगा। पहला चतुर्व्यूह, प्रकृति र पार पर व्योम नाम धाम कृष्ण विग्रह याइछे विभूति आदि गुणवान। तो ये जो भौतिक जगत है इसके परे परव्योम नाम है एक धाम का, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, जहां पर कृष्ण विग्रह भगवान स्वयं जहां पर अलग अलग रूपों में विराजमान रहते हैं। सर्वग अनंत विभू वैकुंठादि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारेरा तहान विश्राम। वो वैकुंठ धाम उसका नाम है, वो अनंत है, वो विभू है, उसका कोई सीमाएं नहीं है। और जहाँ पर कृष्ण और कृष्ण के अलग अलग अवतार जहाँ पर विश्राम करते हैं, तो वैकुंठ लोकों में अलग अलग लोकों में भगवान और उनके अलग अलग जो अवतार हैं उनका नित्य धाम है, जो यहाँ पर इस बौद्ध जगत में अवतरित होते हैं उनका नित्य धाम वैकुंठ जगत में है। तहार ऊपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुला त्रि विधत्वे स्थिति। तो जो वैकुंठ का जो ऊपरी भाग है उसको कृष्ण लोक कहते हैं, और ये कृष्ण लोक के तीन भाग हैं, द्वारका मथुरा और गोकुल। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो भाग है ये वो गोलोक वृंदावन, ये वैकुंठ जगत में सबसे ऊपर का जो भाग है उसका वर्णन है। और जो ये केंद्र में देख रहे हैं आप, ये है श्वेत द्वीप और उसके बीच में वृंदावन और फिर मथुरा और फिर द्वारका। तो इस प्रकार से तीन भाग हैं इस गोलोक के, कृष्ण लोक के तीन भाग हैं, द्वारका मथुरा और गोकुल या वृंदावन, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसमें भी आगे थोड़ा अलग अलग भाग है वो बताएंगे। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। जो तीन भाग हैं गोकुल मथुरा और द्वारका, उसमें भी जो गोकुल है वो सबसे श्रेष्ठ है और उसको ब्रज गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसमें श्वेत द्वीप जो है वो एक, ये बाहर का जो भाग है वो श्वेत द्वीप है और जो अंदर है उसको ये वृंदावन, भगवान का व्यक्तिगत रहने का अलग अलग स्थान ये इस प्रकार से हैं। मथुरा द्वारकाया निज रूप प्रकाशीय नाना रूपे विलासे चतुर्व्यु हैया। अभी ये जो स्थान है इसमें भगवान चतुर्व्यु के रूप में अलग अलग लीला के कार्य करने में अपने ही चार रूप धारण करते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्ध सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुरीय विशुद्ध। ये कौन से चतुर्व्यू? वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और ये सभी तुरीय यानी शुद्ध सत्व में है, ये भौतिक नहीं है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। एक तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय निज गण दैया खेले अनंत समय। ये तीनों लोग जो है द्वारका मथुरा और गोकुल, उसमें भगवान लीलामय है, अपना आनंद विहार करते हैं। पर व्योम मध्य करी स्वरूप प्रकाश नारायण रूपे करेना विविध विलास। अभी इसी परिव्योम में उसके नीचे कृष्ण लोक के नीचे नारायण के रूप में भगवान अपना प्रकाश करते हैं, एक और विस्तार करते हैं नारायण के रूप में पर व्योम के मध्य में। तो अभी हम कृष्ण लोक के नीचे जाएंगे तो ये जो धाम यहां दिखाया है ये हरि धाम या स्पेसिफिकली इसको वैकुंठ, वैकुंठ लोक एक तरीके से सभी वैकुंठ लोक है, उसमें भी जो नारायण जहां रहते हैं उसको भी वैकुंठ लोक कहते हैं। स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुज नारायण रूपे सही तनु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म माहेश्वरमय श्री भू नील शक्ति यानवर चरण सेवया। तो ये अभी वर्णन है नारायण का, चतुर्भुज भगवान द्विभुज हैं श्री कृष्ण और वही रूप उनका जो नारायण है वो चतुर्भुज रूप है जिसमें शंख चक्र गदा पद्म है और श्री भू नीला, ये तीन उनकी शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति जिससे सभी जो उनकी इच्छाएं वो पूरी होती हैं, सभी वैकुंठ जगत स्थापित होता है। इस प्रकार से तीनों शक्ति भगवान नारायण की सेवा में रहती है। सही पर व्योम नारायण चारी पाशे द्वारका चतुर्व्यूहेरा द्वितीय प्रकाश। तो अभी ये जो वैकुंठ यानी नारायण का जो निवास स्थान है वहां पर दूसरा चतुर्व्यूह होता है, उसका विस्तार होता है। भगवान अपना फिर आगे विस्तार करते हैं और महासंकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न में अपना दूसरा विस्तार करते हैं। तो अभी ये हुआ बलराम जी का दूसरा विस्तार यहां पर, महासंकर्षण जिनको बोलते हैं। और पद्म पुराण में विवरण है कि इस जगह पर वेदवतीपुरा है एक स्थान जहां पर वासुदेव रहते हैं, ये उनका एक वैकुंठ लोक है। द्वितीय वासुदेव जो दूसरी द्वितीय चतुर्युग है उसमें वासुदेव का निवास स्थान, उसका नाम वेदवतीपुरा है। और विष्णु लोक है जहां पर महासंकर्षण रहते हैं, प्रद्युम्न द्वारकापुर में रहते हैं और अनिरुद्ध जहां रहते हैं उसका नाम वो जो है शेष के ऊपर शयन करते हैं, श्वेतद्वीप जगह का नाम है जहां वो स्थान जहां पर वो रहते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह एई तुरीय विशुद्ध तान ये रामेर रूप महासंकर्षण चित शक्ति आश्रय तीनों कारणेर कारण। तो ये जो महासंकर्षण है ये बलराम का रूप है, ये सभी कारणों के कारण है और सारा जो वैकुंठ जगत जो बना है जो स्थापित होता है वो उन्हीं की शक्ति से होता है। तो भगवान की शक्तियां हैं और जैसे जैसे भगवान विस्तार करते हैं भगवान की शक्तियों का भी विस्तार होता है। तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं और वही भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में विस्तार करते हैं और वहां पर लक्ष्मी जी के रूप में उनकी शक्तियां उनकी सभी इच्छाओं इत्यादि कार्य करती हैं। तो ऐसे भगवान और भगवान की शक्तियां अलग अलग स्तर पर उनका विस्तार होता रहता है। तुरिया विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम तीनों याम अंश यही सही नित्यानंद राम। तो जो नित्यानंद राम के अंश हैं जो विशुद्ध सत्व हैं उनका ये संकर्षण यानी महासंकर्षण उनका नाम है। तो शंकराचार्य वो ऐसे बताते हैं कि ये जो संकर्षण है ये जीव है, तो इस तरह से उसका गलत व्याख्या करते हैं क्योंकि उनका शिवजी है वो, लेकिन उनका कार्य था संकर्षण के रूप में वेदों को तोड़ मरोड़ करके व्यक्त करना जिससे कि जो बौद्ध अनुलंबी हैं उनको भ्रमित किया जा सके। जो लोग वेदों को छोड़ दिए थे उनको वापस वेद आश्रय में लाने के लिए भगवान के आदेश पर शंकराचार्य ने शास्त्रों का तोड़ मरोड़ करके उसको व्यक्त किया, इसलिए वो कहते हैं संकर्षण जो है वो जीव है। लेकिन यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए इस बात को इंगित कर रहे हैं कि ये जो संकर्षण है ये तुरिया है, तुरिया मतलब ये शुद्ध सत्व में है, जीव नहीं है, ये जीव तत्व नहीं है, वो स्वयं बलराम है। फिर अगला जो श्लोक है उसकी व्याख्या करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। माया भरता भरता जांड संघाशयांग शेते साक्षात कारणाम बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमान आदि देवस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अभी कारण लोकशाय विष्णु, तो सबसे पहले बलराम, उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह जिसमें महासंकर्षण के रूप में बलराम अपना विस्तार करते हैं और उसके बाद फिर आगे कारणकशाय विष्णु के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो अभी हम और नीचे जाएंगे तो आप देखिए नित्यानंद प्रभु बलराम हर स्थान पर हर जगह पर किस प्रकार से अपना विस्तार करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये अभी बलराम का एक और विस्तार महाविष्णु, जो महाविष्णु कारण समुद्र पर शयन कर रहे हैं और उनके रोम छिद्रों से ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो इसके विषय में अभी सुनेंगे। वैकुंठ बाहिरे यही ज्योतिर्मय धाम तहार बाहिरे कारणार्णव नाम। तो अभी ये वैकुंठ के बाहर, वैकुंठ लोकों के बाहर ये सब ब्रह्म ज्योति है जिसमें निराकारवादी लीन होने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति के परे कारण समुद्र है जहां पर महाविष्णु शयन करते हैं। संयुक्त कारणार्णव सही संकर्षण आपनार एक अंश करण शयन। तो अभी ये जो कारण दक्षाय विष्णु है ये भगवान के एक अंश हैं। जो द्वितीय चतुर्युग था महासंकर्षण वो स्वयं बलराम थे एज इट इज, लेकिन अभी यहां पर उनका एक अंश के रूप में वो कारणदकाशय विष्णु के रूप में कारण समुद्र में शयन करते हैं। महत् सृष्टा पुरुषा तिन्हों जगत कारण आद्य अवतार करे माया ईक्षण। तो अभी वर्णन है कारणदकाशय विष्णु का। महत् सृष्टा पुरुषा, ये पुरुष अवतार अभी हो गए, पहले पुरुष अवतार जो महत् सृष्टा पूरे इस सृष्टि के आदि कारण है, महत् सृष्टा जगत कारण इस जगत के कारण, आद्य अवतार सभी अवतारों के आदि मतलब सबसे आदि श्री कृष्ण हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर देखें तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो सभी अवतार हैं वो उनके माध्यम से आते हैं। तो इस तरह से आद्य अवतार कहा गया है। और उनका वो क्या करते हैं, मायाय ईक्षण, वो माया शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तो भगवान का वो रूप जो माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं वो है कारणदकाशय विष्णु। तो जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, या देख रहे हैं यहां पर दिखाया है दृष्टिपात करते हुए, तो भगवान के इस दृष्टिपात से माया शक्ति सृजन करने के लिए क्रियान्वित होती है। अन्यथा माया शक्ति भगवान की तृतीय शक्ति है, उसमें अपने आप से शक्ति नहीं है, अपने आप से वो सृजन नहीं कर सकती है, लेकिन महाविष्णु के ये दृष्टिपात से वो शक्ति प्राप्त करके सृजन करती है। तो नास्तिक वैज्ञानिक गण इस भौतिक जगत को देख करके ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये भौतिक जगत जो अंततः जड़ है, जड़ प्रकृति है, वो अपने आप से सृजन करती है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसा लगता है कि ये अपने आप से सृजन प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन प्रकृति अपने आप से सृजन नहीं कर सकती है, वो ये दृष्टिपात से, भगवान के दृष्टिपात से उसको ये शक्ति मिलती है सृजन की। और ये दृष्टिपात से ही माया के अंदर सभी जीव आरोपित होते हैं। हम सभी जो जीवात्माएं हैं वो इस माया शक्ति के अंतर्गत भगवान के दृष्टिपात से आती हैं। तो जब भगवान ये दृष्टिपात करते हैं तो रमा देवी और उनका फिर विस्तार ये हैं दुर्गा। तो जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये एक और रूप वहां से जो दृष्टिपात करके, जैसे ही वो रमा देवी वहां पर जीवों को वो प्रतिपादित करते हैं तो वहां पर ये शंभु रूप उनका विस्तार में आता है। शंभु जो डायरेक्टली दुर्गा के संपर्क में जो रूप रहते हैं वो है शंभु, लेकिन महाविष्णु के रूप में वो निकट के संबंध में नहीं आते हैं, वो केवल दृष्टिपात करते हैं दूर से। माया शक्ति रहे कारणा धीर बाहिरे कारण समुद्र माया पर शिते नारे। ये जो माया शक्ति है कभी भी कारण समुद्र को टच नहीं करती है। कारण समुद्र में महाविष्णु है और ये जो माया शक्ति है वो कारण समुद्र के बाहर है। और भगवान कैसे संपर्क करते हैं इस माया शक्ति का, केवल दृष्टिपात से, इसके दूर से केवल दृष्टिपात करते हैं, केवल देखते हैं केवल। इस तरह से महाविष्णु कभी माया के निकट संबंध में नहीं आते हैं, लेकिन शंभु के रूप में वो पार्वती के संपर्क में आते हैं। इसलिए शीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्थी हेतु, उसमें यही बताया कि कैसे दूध से दही जैसे खटास मिलने से होती है, ऐसे ही महाविष्णु तो का वो रूप जो दुर्गा यानी माया शक्ति के संपर्क में आता है वो शंभु कहलाता है। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूप शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। तो जड़ प्रकृति में अपने आप जगत का वो कारण नहीं है, शक्ति संचारित होती है महाविष्णु से, तभी वो ये माया शक्ति ये सब अलग अलग रूप प्रकट करती है। कृष्णा शक्ति प्रकृति होय गौण कारण अग्नि शक्ति लौह्य याइचे करय जारण। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण शंकराचार्य गोस्वामी कि जैसे एक लोहे की छड़ी है, अगर उसको अग्नि में रखा जाए तपाया जाए तो वो अग्नि का काम करने लगती है। तो लोहे का अपना स्वभाव नहीं है अग्नि का काम करना, लेकिन अग्नि का अग्नि की शक्ति को धारण करने की वजह से वो तप्त लोहा अग्नि का काम करता है। तो इसी प्रकार से जड़ प्रकृति में अपने आप सृजन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन सृजन करने की शक्ति है महाविष्णु में, वो उसके संपर्क में आने से ये सृजन का कार्य कर पाती है। दूरो हई के पुरुष करे माया ते अवधान जीव रूप वीर्यताते करे न आधान। दूर रह करके भगवान दृष्टिपात करते हैं और जीवों को प्रतिपादित करते हैं। एक अंगा भासे करे माया ते मिलन माया होई ते जन्मे तबे ब्रह्मांडे रगण। और अपने एक अंश के रूप में वो ये जो दृष्टिपात करते हैं उससे फिर ये माया अलग अलग ब्रह्मांड सृजित होते हैं। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दृष्टिपात करते हैं भगवान माया से और फिर माया शक्ति के द्वारा उस शक्ति से अलग अलग जो ब्रह्मांड है उनकी उत्पत्ति हो रही है। ये सब कारण समुद्र के बाहर है। अगण्य अनंत जत अंड सन्निवेश तत रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। तो ऐसे अनंत अनंत ऐसे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति भगवान करते हैं। गर्भोद शिरोद शयी दोनों पुरुष नाम सेई दुई यान्द्र अंश विष्णु विश्वधाम। तो अभी ऐसे अनंत जो कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं उसमें भगवान दोबारा से अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में। गर्भोदक शाही विष्णु शिरोदक शाही विष्णु ये दोनों ही उनके अंश हैं। तो गर्भोदक शाही विष्णु के बारे में अभी वर्णन होगा। ये एक श्लोक उद्धृत करते हैं। विष्णु स्तुतिनी रूपाणी पुरुषाख्यानी अथो विदुः एकम तु महता सृष्टिर द्वितीयम तु अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानी ज्ञात्वा विमुच्यते। कि तीन विष्णु रूप हैं पुरुष, तीन पुरुष अवतार, एक महत सृष्टि, एक से सृष्टि होती है, द्वितीय से अंड संस्थितम दूसरे जो है वो एक ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, तृतीय सर्वभूतस्थम तृतीय जो है वो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, इसको जो जानता है वो मुक्ति प्राप्त कर देता है। यस्याम श्याम शह शिल गर्भो दशई, अभी अगला श्लोक उसका वर्णन शुरू होगा। यम नाभि अब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टुः सूतिका धाम धातुस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो अभी यहां पर और आगे चलते हैं। अभी बलराम एक उनके और एक अंश के अंश यहाँ पर कारणदकशाय विष्णु अपना अगला विस्तार करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हैं गर्भोदकशाय विष्णु। तो गर्भोदकशाय विष्णु की नाभि से ये कमल निकलता है, कमल पुष्प, और इसकी जो नाद है ये सभी एक एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक हैं ये उनका आश्रय स्थान है, यानी सभी इन्हीं नाद के अंदर से ही वो जनित होते हैं, ब्रह्मांड उनको सबकी उत्पत्ति करते हैं इस नाल से। सही तो पुरुष अनंत ब्रह्मांड सिजिया सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। इस प्रकार से गर्भोदकश विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं। निजांग स्वेद जल कैला सृजन सही जल कैला अर्ध ब्रह्मांड भरण। तो अभी आप यहां पर जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि भगवान ने इसके अंदर प्रविष्ट हुए और फिर अपने स्वेद जल अपने पसीने से ये एक एक ब्रह्मांड को आधा उन्होंने भर दिया। ये गर्भोदक समुद्र है जो आप नीला देख रहे हैं और इसके ऊपर भगवान अनंत शेष जो एक और भगवान के अंश के अंश के अंश हैं उनके ऊपर भगवान शयन करते हैं। तन्हाई प्रकट कैला वैकुंठ निज धाम शेष शयन जरे करिल विश्राम। तो एक और वहां वैकुंठ धाम भगवान बनाते हैं, भगवान जहां रहते हैं वो वैकुंठ धाम, और वहां पर फिर अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। अनंत शय्याते तान्हा करिल शयन सहस्र मस्तक तान्द्र सहस्र वदन सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन सर्व अवतार बीज जगत कारण। अभी ये अनंत का वर्णन है, अनंत शेष का, इनके अनंत शेष हैं, यानी कि अनंत अनंत जो है इनके मुख हैं और अनंत हस्त हैं और ये जो अनंत शेष है इनकी शैया के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं। तांड्र नाभि पद्म हैते उठिला एक पद्म सही पद्म हैले ब्रह्मार जन्म सद्म। तो ये उनकी नाभि से ये कमल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। सही पद्म नाले हैले चौदह भुवन तेनो ब्रह्मा हैय सृष्टि करिला सृजन। ये जो नाल है इस कमल की, उस नाल के अंदर चौदह भुवन, एक एक ब्रह्मांड में चौदह भुवन है। सबसे ऊपर जो है वो ये ब्रह्मा का निवास स्थान है ब्रह्मलोक, और सबसे नीचे पाताल लोक है, ऐसे करके चौदह भुवन है। ये चौदह भुवन जो है ये आप जैसे देख रहे हैं ये इस नाल में है, ये जो लोटस है कमल है उसकी नाल में ये सभी चौदह भुवन स्थापित होते हैं। फिर अगले श्लोक का वर्णन अंतिम जो विस्तार है बलराम के, यस्याम श्याम शाह नहीं अंतिम है उससे पहले परमात्मा, यस्याम श्याम शाह परात्मा अखिलानाम पोष्टा विष्णु भाति दुग्धाब्धि शयी शौमी भर्ता यत कला सो अपि अनंतस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो अभी परमात्मा के रूप में जो भगवान सबके हृदय में है उनका वर्णन है। सेवि विष्णु शेष रूपे धरेण धरणी काना आछे मही शीरे हेन नाही जानी। वही जो भगवान विष्णु है शेष के रूप में अलग अलग सभी ग्रहों को अपने शीश के ऊपर धारण करते हैं, लेकिन वो कहां पर ये सभी लोग स्थित हैं उनको ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक छोटे से सरसों के दाने की तरह से उनके शीश के ऊपर रहते हैं। तो यहां देख रहे हैं ये जो अनंत शेष हैं ये सभी इन लोगों को अपने शीश के ऊपर धारण करते हैं, लेकिन ये पूरे 14 लोग इतने ही हैं जैसे कि एक सरसों के दाने के भी आप हाथ में ले लें तो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसी प्रकार से एक सरसों के दाने के समान है उनके लिए ये सारे 14 भुवन। पंचाशत कोटि योजना पृथ्वी विस्तार यांग एक फणे रहे सरसप आकार। तो अभी ये एक ब्रह्मांड जो है वो उसका विस्तार बताया है कि पंचशत 500 कोटि योजना उसका व्यास है, डायमीटर है, और वो भगवान के एक फण के ऊपर एक सरसों के दाने की तरह से केवल रहता है। सही तो अनंत शेष भक्त अवतार ईश्वर सेवा बिना नाही जाने आर। तो ये जो अनंत हैं ये भगवान भक्त अवतार हैं, भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं, और भगवान की सेवा के बिना और कुछ उनका वो कुछ और नहीं जानते हैं। इससे पहले यहां पर ये परमात्मा का जो स्थान है ये 14 भुवन में ध्रुव लोक जहां पर है, ध्रुव लोक वहां पर उसकी जो परिधि है ऑर्बिट है उसमें एक श्वेत द्वीप है। उस श्वेत द्वीप में ये जो श्वेत द्वीप है ये क्षीर सागर में है और यहां पर जो है वो श्री गोकशाय विष्णु वास करते हैं। जब आप देखते हैं ब्रह्मा देवतागण जब भी कोई समस्या आती है इस पूरे संसार के अंदर, बड़ी समस्या आती है, तो ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर के यहाँ जाते हैं ये क्षीर सागर में और यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, केवल आवाज़ सुन पाते हैं और वहाँ से उनको आदेश प्राप्त होते हैं। सहस्र वदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पाए। तो ये अनंत शेष अपने सहस्र मुखों से हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, लेकिन कभी भी वो गुणगान करके समाप्त नहीं कर पाते हैं, इतने भगवान के गुण हैं। सनकादि भागवत सुने यान्द्र मुखे, भगवानेरा गुण कहे भासे प्रेम सुखे। और यही अनंत शेष जो है वो सनक आदि भागवतों को भगवान का गुणगान करते हैं, भागवत सुनाते हैं और उससे सुनकर के वो प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। चत्र पादुका शैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। ये अनंत शेष जो है भगवान के छत्र अम्ब्रेला, पादुका शैया उपाधान वसन, सभी प्रकार के उनका यज्ञ सूत्र सिंहासन, ये सभी जो हैं ये अनंत शेष ही हैं जो भगवान के ये अलग अलग चीजों में अपना विस्तार करते हैं और इस तरह से भगवान की सेवा अलग अलग रूप में करते हैं। सहित अनंत यान्द्र कही एक कला, हिना प्रभु नित्यानंद के जाने तान्द्र खेला। तो ये जो अनंत हैं उनकी एक कला है, यानी अंश के अंश उनको कला कहते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु हैं, इनके कौन इनके खेल को, कौन इनकी लीलाओं को पूर्ण रूप से समझ सकता है। एई रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश, सही भावे कहे मुई चैतन्य रदास। तो ये जो नित्यानंद हैं अलग अलग रूप में इस प्रकार से अपना प्रकाश करते हैं और बोलते हैं कि मैं चैतन्य का दास हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं उनकी इस प्रकार से अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं। कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला, पूर्वे येना तीना भावे व्रजे कैल खिला। तो जैसे ब्रज में बलराम अलग अलग रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, दाऊ जी बड़े भाई के रूप में, कभी सखा के रूप में इत्यादि, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी गुरु कभी सखा कभी सेवा सेवक बन करके करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कण स्पर्शी मात्र सही कृपा तनहार। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है, महिमा जो है वो अपार है, उसकी महिमा का कोई पार नहीं लगा सकता है। उनकी कृपा से एक कण मात्र मैंने स्पर्श किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। तो वास्तव में हम भगवान की लीला भगवान की महिमा का गुणगान पर्याप्त मात्रा में नहीं कर, अनंत शेष भी नहीं कर पाते हैं, उन अनंत शेष की करुणा की महिमा का गुणगान भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम संचारित होते हैं इस महिमा को अप्रिशिएट करने के लिए, नहीं तो हमें केवल ये एक इंफॉर्मेशन लगती है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो ये जो महिमा है उससे प्रेम उदय होता है, कृष्ण प्रेम उदय होता है। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं तो वो ये गुणगान करते हुए प्रेम विवल हो रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद कृपा नित्यानंद प्रभु के पास है। आगे वर्णन करेंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु के पास है उनको वृंदावन धाम मिला और वृंदावन धाम में रूप गोस्वामी और सभी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के महान अनुयायी का रिवल्यूशन हुआ, प्रकटीकरण उनके सम्मुख हुआ और श्री गोविंद देव का प्रकटीकरण हुआ। तो ये महिमा जैसे नास्तिक लोग हैं उनके सामने महिमा, वो लोग ये महिमा सुनेंगे तो बोलेगा बिल्कुल ये केवल एक बस कोरी कल्पना है ना, क्योंकि नास्तिक होने के कारण उनका हृदय जो है वो पत्थर के समान हो गया है। और हम जो हैं विधि भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति में प्रवेश किए हैं, तो हमें भी भगवान की महिमा सुन करके वो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी में जिस प्रकार से वो आनंद विभोर हो रहे हैं भगवत प्रेम में ये सुन करके, हमारे अंदर ऐसे लक्षण प्रस्तुत नहीं होते हैं क्योंकि हमारा हृदय भी ऐसे ही पत्थर के समान है। हालांकि हमारा कुछ प्रवेश अभी हुआ है भक्ति में, लेकिन अभी अनर्थ इतने हैं कि हमारे अंदर भी ये भगवान का गुणगान सुन करके हमें नींद आती है। करेक्ट, सुनाने वाले को नहीं आती, क्योंकि सुना रहा है, नहीं तो उसको भी नींद आती लेकिन इस तरह सब एक ही है कि हमारे अंदर अनर्थ होने की वजह से हम भगवान का गुणगान ना सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए नित्यानंद प्रभु से कि हमें भी ऐसी स्फूर्ति आए कि हम भी भगवान का ये नाम गुणगान सुनने में, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं दो कान काफ़ी नहीं है, है ना, तो ऐसी स्थिति हमारी कब होगी, ऐसी प्रार्थना कम से कम हमें करना चाहिए। आर एक सुनता कृपार महिमा अधम जीवेर छडाइला ऊर्ध्व सीमा। फिर कृष्णास गोस्वामी कहते हैं अभी एक और बात सुनो, नित्यानंद प्रभु की एक और कृपा सुनो, मैं तो उसका वर्णन करूंगा अभी। अवधूत गोस्वामी रा एक भृत्य प्रेम धाम मीन केतन रामदास हय्यतां प्रणाम। तो अभी एक वर्णन करते हैं लीला का नित्यानंद प्रभु की कि मीन केतन रामदास एक नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जो प्रेम धाम थे। What's happening? Okay. तो ये अवधूत नित्यानंद प्रभु को अवधूत भी कहते हैं, अवधूत एक अलग विषय है, आज वर्णन नहीं हो पाएगा उसका। तो उनके एक सेवक थे जो प्रेम के धाम थे, कृष्ण प्रेम में हमेशा डूबे रहते थे। तो एक बार मीन केतन रामदास वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर आते हैं, उस गांव में आते हैं और प्रेम देवल होकर के कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो वहां पर एक पुजारी थे उनके घर में, तो पुजारी उनको समझ नहीं पाए मीन केतन रामदास की महिमा को, और वो सही प्रकार से उनको उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो मीन केतन रामदास देखते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार से दुर्बुद्धि है, और जिस प्रकार से रोमहर्षण सुत ने बलराम का सत्कार नहीं किया था उसी प्रकार से इसकी स्थिति है। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और जाते जाते कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई जो हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन भाई भी सही से उनका सत्कार नहीं करते हैं। तो ऐसी दुर्भाग्य वहाँ होता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर रात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी के स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आते हैं और उनको आदेश देते हैं कि तुम वृंदावन चले जाओ। और उठते ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो वृंदावन चल दिए, और वहाँ पर जाकर के एक एक करके उनका ये सभी अभीष्ट पूरे हुए, उनको सेवा प्राप्त हुई, रूप गोस्वामी के चरण कमलों की, सभी गोस्वामियों की, और उनको ये आदेश प्राप्त हुआ चैतन्य चेतामृत लिखने का, उनको पूरा साक्षात्कार हुआ। तो वो वर्णित कर रहे हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने एक एक करके ये सब चीज़ें मेरे लिए उजागर की। तो नित्यानंद प्रभु वो चैतन्य महाप्रभु को का दर्शन हमें कराते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग में कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जाने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि उनको बहुत सारे विघ्न आ रहे थे, उनके माता पिता पैदल जाने नहीं दे रहे थे, ऐसे बहुत सारे विघ्न थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के आदेश को पालन करते हुए पानीहटी, जहाँ पर पानीहटी उत्सव जिसको हम मनाते हैं, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने उनको एक सेवा दी, और वो सेवा थी कि सभी वैष्णवों को आप चिड़ा दधी महोत्सव करके उनको सभी वैष्णवों को आप तुष्ट कीजिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत हृदय से नित्यानंद प्रभु की ये आदेश का पालन किया, और ये आदेश का पालन करने के कारण नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही आपको चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त होगी। और बहुत समय से हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयास कर रहे थे, जिस जंजाल में फंसे हुए थे सर्कमस्टेंसेस में, उससे निकलने का, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। अभी नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करने पर वो फिर निकल पाए और चैतन्य महाप्रभु की शरण वहाँ पर पहुँच गए। और उसके बाद से फिर वहाँ पर पुरी में इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रत हो गए। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और जैसे मैंने बताया कि नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व जो है, सभी गुरु गुरुजन वो नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये एक दिव्य विज्ञान है, भगवान को समझना, भगवान के साथ संबंध स्थापित होना। ये केवल एक मात्र औपचारिक रूप से अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करने से नहीं आएगा। इवन यहाँ तक कि हरे कृष्ण महामंत्र मात्र करने से भी ये नहीं आएगा। अगर हम वो हरे कृष्ण महामंत्र केवल एक यांत्रिक दृष्टि से कर रहे हैं, इस समझ से कि ये मंत्र एक मशीन की तरह से है और इसको करने से ये इनके कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो भी ऐसा नहीं होगा। ये कृपा मार्ग है। अंततः भगवान एक व्यक्ति हैं और भगवान के सब विस्तार नित्यानंद प्रभु के रूप में वो भी व्यक्ति हैं, और हमारा जो मनोभाव है वो उनको प्रसन्न करने का होना चाहिए। उस प्रसन्न करने की भावना से जब हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, तब अगर नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे तो हमें साक्षात्कार होगा भगवान का। साक्षात्कार होगा मतलब भगवान के प्रति हमारी सेवा भावना उदित होगी, ये सबसे पहले साक्षात्कार है। साक्षात्कार का हमें अर्थ ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी आंखों के सामने कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे। ऑफकोर्स वो भी है, लेकिन सर्वप्रथम जो भगवान का साक्षात्कार होता है उसकी अनुभूति में होती है जब किस प्रकार से इस भौतिक जगत में जब हमारी आसक्ति कम होती है और भगवान की सेवा के प्रति रुचि बढ़ती है, वो साक्षात्कार का प्रारंभ है। और अगर इस साक्षात्कार के बिना कोई सीधा भगवान को इन नेत्रों से देखने की कोशिश करेगा तो वो भ्रांत धारणा है, वो फिर सहजिया बन जाएगा। तो इसलिए हमें जो गुरुजन हैं उनके उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी? जो नित्यानंद प्रभु वर्तमान समय में जिन पर्सनैलिटीज, जिन व्यक्तियों के माध्यम से हमारे सम्मुख हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, श्री प्रभुपाद जो हम सभी के शिक्षा गुरु हैं, तो उनकी शरणागति लेकर के हम नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त कर सकते हैं और फिर राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। तो राधा कृष्ण तत्व को समझना बहुत आगे की बात है, वो क्रमिक रूप से जाना होगा। तो हमारा जो इमीडिएट शेल्टर है, हमारे जो तुरंत जिनका हमको आश्रय ग्रहण करना है, वो है श्री प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधि। और शरणागति अर्थात उनके जो वचन हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य चितेते करी आख्या आरण करी हो मने आशा, ये शरणागति है कि उनके जो वाणी है, उनके जो आदेश है, उनका जो संदेश है, उसको अंगीकार करना और उसके अलावा और कोई आशा नहीं, इच्छा नहीं होना। तो इसके लिए हमें श्री प्रभुपाद की इच्छा को, मनोभीष्ट को जानना होगा। जैसे रूप गोस्वामी की वंदना होती है कि वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं, और उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद रूप गोस्वामी के मनोभीष्ट को जानते हैं। तो इसलिए हम यदि श्री प्रभुपाद के मनोभीष्ट को जानेंगे तो फिर हम उनकी सेवा कर पाएंगे। और उनके मनोभीष्ट को जानने के लिए प्रभुपाद ने बोला, इफ़ यू वॉन्ट टू नो मी रीड माई बुक्स, मेरी पुस्तकें पढ़िए। प्रभुपाद को जानने के उद्देश्य से, इस मंशा से कि हमें प्रभुपाद को जानना है, किस लिए? प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, जैसे कि हमको प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हो सके और हम हमारे अंदर कृष्ण प्रेम स्फुरित हो सके। तो इस तरह से ये सब जो अवसर हैं, नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव दिन है, हम ये महोत्सव मना रहे हैं, ये सभी महोत्सव हमें याद दिलाने के लिए है कि हमें शरणागति लेनी है गुरुजनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की, और वही हमारी एकमात्र आशा है कि हम जो इतना दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, हम जैसे निकृष्ट जीव भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु उदार होकर के अपनी ये करुणा सबको दिए, पापी तापी जगाई मधाई। तो जगाई मधाई के वृत्तांत में हम देखते हैं कि कोई उनकी योग्यता नहीं थी, जितने भी पाप कर सकते हैं वो सब पाप वो करते थे, लेकिन उनके ऊपर भी नित्यानंद प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। ये तो इतने निकृष्ट हैं, इनके ऊपर इनको क्या कृष्ण प्रेम देना, बल्कि विशेष रूप से गए ये जगाई मधाई। यहां अगर ये लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु की ख्याति सब जगह फैल जाएगी, इनको तो विशेष उद्धार करना है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है, ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करते हैं नित्यानंद प्रभु, ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं। अभी उसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने को विशेष रूप से अयोग्य बनाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा हम तो विशेष रूप से अयोग्य ही, उसको बनाने के लिए जरूरत नहीं है कुछ करने की। जगाए मधाई जैसे तो आज सब लोग हैं, बहुतायत में है जगाए मधाई, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जगाए मधाई जैसे हम हैं तो हमारा और कोई शेल्टर नहीं है। नित्यानंद प्रभु जो करुणामयी है तो उनका हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हमारी और क्या योग्यता है, हमारे कितने सब निर्लज होकर के हम लोग सब पाप कृत्य में रत रहे हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हमारे आश्रय हैं जो जगाए मधाई का उद्धार किए, तो वो स्मरण करके जैसे कृष्णाचार्य गोस्वामी विनम्रता से ऐसा कह रहे हैं, जगाए मधाई से भी मैं निकृष्ट हूँ, वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ये यथार्थ है, ये वास्तविकता है। तो ये जो सभी अवसर हैं ये हमें इस प्रकार से ये स्मरण कराने के लिए हैं कि हमें उनकी शरण ग्रहण करनी होगी, और शरण ग्रहण करना केवल बोलने से नहीं होता है, शरण ग्रहण करने का मतलब जो भी शरणागति के छह अंग हैं उसको पालन करने से होता है, अनुकूल जो भी अनुकूल है उनकी सेवा के लिए उसको स्वीकार करना, जो भी प्रतिकूल उसको छोड़ना। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चैतन्य में बताए हैं, तो श्री प्रभुपाद उसके ऊपर कमेंट्री लिखे हैं, पूर्ववर्ती आचार्य श्री प्रभुपाद, तो हमें समय निकालना चाहिए ये सब पढ़ने के लिए, तब हम उनके आदेश को बार बार पढ़ना चाहिए, तब हम उनके आदेश को उनके संदेश को समझ पाएंगे, और करुणा की भावना दया की दया प्राप्त हो ऐसी भावना से पढ़ना चाहिए, अहंकारवश नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं अपने बलबूते पर जान सकता हूँ चैतन्य महाप्रभु को, ये आधुनिक स्कॉलर्स का मनोभाव होता है जब वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, इस भावना से कभी भी हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन विनम्र भाव से सेवा की भाव से कि ये शास्त्र हम पढ़ रहे हैं सेवा के लिए, इस उद्देश्य से इस भावना से हमें श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय।